एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
ज्ञान गोष्ठी में सभी सुनने वालों का स्वागत। मैं हूं आपका पहला मेजबान।
और मैं हूं आपकी दूसरी मेजबान। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो बहुत विशाल है, बहुत दिलचस्प भी, और जिसके बारे में शायद हम सोचते हैं कि हम जानते हैं पर शायद पूरी कहानी नहीं जानते।
बिल्कुल सही कहा। हम बात कर रहे हैं उस्मानी साम्राज्य की, जिसे ऑटोमन एम्पायर भी कहते हैं, और हमारी चर्चा का आधार है इतिहासकार कैरोलिन फिंकल की एक बहुत ही शानदार किताब उस्मान का सपना।
हाँ, ऑस्मन्स ड्रीम। ये किताब ना उस्मानी साम्राज्य के उस 600 साल लंबे इतिहास पर एक नई रोशनी डालती है, कह सकते हैं।
600 साल मतलब आज के जमाने में सोचना भी मुश्किल है कि कोई सल्तनत इतनी लंबी कैसे चल सकती है।
सही बात है, लेकिन सवाल ये उठता है कि एक साम्राज्य जो करीब 100 साल पहले खत्म हो गया, उसकी कहानी आज हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्या ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं?
यही तो फिंकल की किताब मजेदार हो जाती है। वो कहती हैं कि ये सिर्फ पुरानी बात नहीं है। अक्सर हमें कहानी क्या सुनाई जाती है कि भाई एक साम्राज्य उठा, महान बना, और फिर धीरे धीरे कमजोर होकर खत्म हो गया।
हाँ, एक सीधी सी उदय और पतन की कहानी, जैसे कोई चीज बस अपनी एक्सपायरी डेट पर पहुंच गई हो।
ठीक वही। लेकिन फिंकल इसी सीधी कहानी को चैलेंज करती हैं। वो कहती हैं कि उस्मानी साम्राज्य की कहानी सिर्फ पतन की नहीं बल्कि लगातार बदलते रहने की है, संकटों से जूझने और खुद को नए हालातों में ढालने की।
अच्छा, मतलब लचीलेपन की कहानी, एडाप्टेशन के।
बिल्कुल, अनुकूलन और टिके रहने की एक असाधारण दास्तान है जो 6 सदियों तक चली। ये कोई छोटी बात नहीं है।
और इसे समझना शायद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज का जो तुर्की है या मध्य पूर्व और बाल्कन के देश हैं, उनकी राजनीति, उनका समाज, पहचान, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं इसी उस्मानी अतीत से जुड़ी हुई हैं।
है ना?
हाँ,
उस इतिहास को समझे बिना आज को समझना वाकई अधूरा रह जाता है।
तो चलिए फिर कैरोलिन फिंकल के नजरिए से इस 600 साल के सफर को समझने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, पर चर्चा शुरू करने से पहले थोड़ा कैरोलिन फिंकल के बारे में जान लें।
हाँ, मतलब ये कौन है, क्या खास बातें हैं इनकी?
जरूर, देखिए, वो एक जानी मानी ब्रिटिश इतिहासकार हैं और उस्मानी इतिहास की दुनिया में मतलब एक्सपर्ट मानी जाती हैं। उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है।
जी, और उनकी खासियत ये है कि उन्होंने सिर्फ मतलब बाहर बैठकर पश्चिमी स्रोतों पर ही भरोसा नहीं किया।
नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा तुर्की में बिताया है, बाकायदा वहाँ की भाषा सीखी है।
अच्छा। हाँ, और सीधे उस्मानी दस्तावेजों आर्काइव्स में जाकर रिसर्च किया है, जिसे हम प्राइमरी सोर्स कहते हैं ना,
यानी सीधे घोड़े के मुंह से सुना है कहा जाए तो, ना कि सिर्फ दूसरों की कही सुनी बातों पर।
बिल्कुल, इससे उनकी विश्लेषण में एक अलग ही गहराई आती है, एक प्रामाणिकता।
और उनका नजरिया भी शायद थोड़ा अलग है, मतलब जहाँ कई पश्चिमी इतिहासकार उसे सिर्फ पतन या यूरोप का बीमार आदमी कहकर देखते थे।
हाँ, फिंकल उसे उसकी अपनी शर्तों पर अंदर से समझने की कोशिश करती हैं। वो यूरोप केंद्रित नजरिए से हटकर देखती हैं। वो सिर्फ लड़ाइयों और सुल्तानों की कहानी नहीं बताती।
अच्छा, तो फिर क्या?
वो समाज, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, रोजमर्रा की जिंदगी, इन सबको साथ लेकर चलती हैं। और सबसे बड़ी बात, वो ये दिखाती हैं कि जिससे पतन कहा गया, वो असल में एक बहुत ही मुश्किल, जटिल और लंबा दौर था, जिसमें साम्राज्य लगातार खुद को बचाने और बदलने की कोशिश कर रहा था, हार नहीं मान रहा था एक तरह से।
तो अब आते हैं किताब पर, उस्मान का सपना। ये है क्या आखिर, मतलब इसका सार क्या है?
संक्षेप में कहें तो ये उस्मानी साम्राज्य की पूरी कहानी है। लगभग 1300 ईस्वी में, जब वो अनातोलिया में एक छोटी सी रियासत थे, वहां से लेकर 1923 तक, जब तुर्की गणराज्य बना और सल्तनत खत्म हो गई। पूरे 600 साल।
बाप रे, 600 साल का इतिहास एक किताब में।
हाँ, और जैसा हमने पहले कहा, किताब का जो दिल है, उसका केंद्रीय तर्क, वो ये है कि उस्मानी साम्राज्य कोई पत्थर की लकीर नहीं था, कोई स्थिर ढांचा नहीं,
बल्कि
ये एक बेहद गतिशील, लचीला और जरूरत के हिसाब से खुद को बदलने वाला राज्य था, एडाप्टिव जिसे कहते हैं।
तो फिंकल का मुख्य तर्क यही है कि साम्राज्य इतने लंबे समय तक टिकाई इसलिए रहा क्योंकि वो लगातार बदलता रहा।
बिल्कुल, जब भी कोई बड़ा संकट आया, चाहे वो बाहरी हमला हो, अंदरूनी बगावत हो या आर्थिक मुश्किल, साम्राज्य ने उसका जवाब देने के लिए अपनी संस्थाओं को बदला, अपनी सेना को, अपने शासन के तरीके को, यहाँ तक कि अपनी पहचान को भी बदलने की कोशिश की।
और किताब का नाम? उस्मान का सपना।
हाँ, वो उस कहानी से आता है जिसमें कहते हैं कि साम्राज्य के संस्थापक उस्मान ने एक सपना देखा था कि उसके वंश से एक विशाल पेड़ निकलेगा जिसकी छाया पूरी दुनिया पर फैलेगी।
अच्छा, एक तरह की भविष्यवाणी।
हाँ, फिंकेल इसे एक प्रतीक की तरह इस्तेमाल करती हैं, लेकिन वो दिखाती हैं कि हकीकत सपनों से कहीं ज्यादा उलझी हुई थी, संघर्षों से भरी हुई। ये सपना पूरा तो हुआ, लेकिन लगातार मरम्मत, जोड़ तोड़ और बदलाव के साथ। कोई सीधी रेखा नहीं थी।
तो फिंकेल हमें इस पूरी यात्रा पर ले जाती हैं, कैसे एक छोटी सी रियासत फैली, फिर कुस्तुनतुनिया यानी इस्तांबुल की विजय हुई, फिर सुलेमान महान का सुनहरा दौर गया।
हाँ, और फिर वो दौर जिसे अक्सर पतन कहा जाता है, पर फिंकेल उसे संकट और परिवर्तन का दौर कहती हैं, और आखिर में 19वीं सदी के वो आधुनिकीकरण के प्रयास और साम्राज्य का टूटना।
तो अब थोड़ा गहराई में उतरते हैं। फिंकेल ने इस लंबे इतिहास को समझने के लिए मोटे तौर पर तीन हिस्सों में देखा है ना?
हाँ, कह सकते हैं। हम इन्हें पूरी तरह पालानुक्रमिक ढंग से शायद ना देखें, पर साम्राज्य के बदलते स्वरूप और फिंकेल के मुख्य तर्क यानी अनुकूलन बनाम पतन को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं।
ठीक है, तो पहला दौर साम्राज्य का बनना और उसका शिखर, लगभग 1300 से 1566 तक।
हाँ, वो शुरुआती दौर। फिंकेल बताती हैं कि शुरुआत बहुत साधारण थी, ये कोई बड़ी सल्तनत नहीं थी, बल्कि बिजेंटिन सीमा पर गाजी यानी धर्म योद्धाओं का एक छोटा सा समूह था।
गाजी?
हाँ, मतलब इस्लाम के लिए लड़ने वाले योद्धा। लेकिन इनकी सफलता का राज सिर्फ धर्म नहीं था, बल्कि इनकी व्यवहारिकता थी, इनका लचीलापन था।
अच्छा, कैसे?
देखिए, वो सिर्फ तुर्क नहीं थे, उन्होंने हर तरह की योद्धाओं को, यहाँ तक कि ईसाइयों को भी अपने साथ मिला लिया। उन्होंने नई सैन्य तकनीकें अपनाई, जैसे तोपों का इस्तेमाल।
और धीरे धीरे वो फैलते गए। बुर्सा, फिर अडिर्ने राजधानी बनी।
हाँ, और बालकन में घुस गए। वो जो उस्मान के सपने वाली कहानी है, हो सकता है वो बाद में जोड़ी गई हो अपनी कामयाबी को एक तरह से जायज ठहराने के लिए।
अच्छा,
और इसी दौर में साम्राज्य की रीढ़ बनी वो खास सेना येनिचेरी।
हाँ, येनिचेरी सेना। ये बड़ी अनोखी चीज थी, देविशर्मे प्रणाली से बनती थी। मतलब बालकन के ईसाई लड़कों को लिया जाता था, उन्हें इस्लाम में लाया जाता था, और फिर उन्हें सीधे सुल्तान के वफादार सैनिक या अफसर बनाया जाता था।
सोचिए, एक ऐसी सेना जो किसी जमीन या कबीले से नहीं जुड़ी थी, सीधे सुल्तान से जुड़ी थी।
बिल्कुल, इसने सुल्तान को बहुत ताकत दी। ये एक तरह की गुलाम एलीट थी जो बहुत शक्तिशाली हो गई।
और फिर आया 1453 का वो साल, कुस्तुनतुनिया की विजय।
हाँ, सुल्तान महमद द्वितीय विजेता ने जब कुस्तुनतुनिया जीता।
ये गेम चेंजर था सही मायनों में। अब उस्मानी सिर्फ एक रियासत नहीं रहे, वो एक सच्चा साम्राज्य बन गए।
और महमद ने उसे फिर से बसाया एक शानदार बहुसांस्कृतिक राजधानी के तौर पर, जिसे हम आज इस्तांबुल कहते हैं।
बिल्कुल, और इस दौर का शिखर माना जाता है सुलेमान महान का शासनकाल, है ना, 1520 से 1566 तक।
हाँ, सुलेमान द मैग्निफिसेंट। साम्राज्य अपनी सीमाओं के चरम पर था, यूरोप में हंगरी तक, पूरब में इराक तक।
वो सिर्फ एक विजेता ही नहीं थे, उन्हें कानूनी भी कहा जाता था, मतलब कानून बनाने वाले। उन्होंने कानूनों को संहिताबद्ध किया, और उनके समय में कला, वास्तुकला, उसका भी खूब विकास हुआ। वो उस्मानी ताकत और संस्कृति का प्रतीक बन गए।
यहाँ तक तो कहानी एकदम उदय वाली लगती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है।
हाँ, लेकिन अब आता है वो हिस्सा जहाँ फिंकेल का नज़रिया पारंपरिक सोच से अलग होता है। वो दौर सुलेमान के बाद का, लगभग 1566 से 1789 तक, जिसे पारंपरिक इतिहास पतन की शुरुआत मानता है।
और फिंकेल कहती है कि ये पतन नहीं था।
वो कहती हैं कि ये सीधा ढलान नहीं था, बल्कि बदलाव का एक बहुत लंबा और मुश्किल दौर था। सुलेमान के बाद साम्राज्य कमजोर नहीं हुआ, बल्कि उसे नई और बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
जैसे कि?
जैसे वो जो अमेरिका की खोज हुई, वहां से चांदी आई यूरोप में, उससे उस्मानी इलाकों में भारी महंगाई बढ़ गई। मूल्य क्रांति कहते हैं इसे, अर्थव्यवस्था हिल गई।
अच्छा, और
फिर यूरोप में हैब्सबर्ग साम्राज्य और पूरब में सफावी ईरान से बहुत लंबे, महंगे और थका देने वाले युद्ध चले, जिनका कोई निर्णायक नतीजा भी नहीं निकल रहा था।
अंदरूनी तौर पे भी दिक्कतें थीं।
हाँ, बहुत। वो जो येनिचेरी सेना थी, जो कभी ताकत थी, अब वो खुद एक राजनैतिक ताकत बन गई थी। वो सुल्तानों के खिलाफ साजिशें करने लगी, अपनी मनमानी करने लगी, एक बोझ बन गई थी।
और सुल्तान भी शायद उतने सक्रिय नहीं रहे।
हाँ, वो महल में ज्यादा रहने लगे, तो असली ताकत अक्सर वजीरों के पास या महल के अंदर हरम की प्रभावशाली औरतों के पास चली गई, और अनातोलिया जैसे इलाकों में सैलाली विद्रोह हुए, किसानों और लुकेरों के, मतलब अंदर से भी काफी उथल पुथल थी।
तो इतने सारे संकट थे, फिर फिनकेल ये क्यों कहती हैं कि ये पतन नहीं था?
उनका तर्क ये है कि साम्राज्य इन संकटों के जवाब में ढह नहीं गया, उसने खुद को बदला। हाँ, वो शायद सुलेमान के दौर जैसा बाहरी तौर पर शक्तिशाली नहीं रहा, लेकिन उसने टिके रहने के, शासन चलाने के नए तरीके ढूंढ लिए।
कोई उदाहरण है इसका?
हाँ, जैसे 17वीं सदी में कोप्रिलु परिवार के कुछ वजीर हुए। वो बहुत सख्त थे, लेकिन उन्होंने कुछ समय के लिए फिर से व्यवस्था कायम की, सेना में अनुशासन लाए, कुछ जीते भी हासिल की। ये दिखाता है कि सिस्टम में अब भी जान बाकी थी, वो खुद को सुधार सकता था, एडजस्ट कर सकता था।
अच्छा,
लेकिन फिर वो वियना वाली हार हुई 1683 में।
हाँ, वो एक बड़ा झटका था।
वियना का दूसरा घेरा असफल रहा और उसके बाद यूरोप की ताकतों ने मिलकर उस्मानियों को हराया और 1699 में कार्लोविट्स की संधि हुई।
उसमें क्या हुआ?
उसमें उस्मानियों को पहली बार यूरोप में अपनी जीती हुई जमीन का एक बड़ा हिस्सा हंगरी छोड़ना पड़ा। ये सिर्फ जमीन का नुकसान नहीं था, ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक धक्का था। पहली बार उन्हें लगा कि शायद यूरोप सैन्य मामलों में उनसे आगे निकल रहा है।
ये तो वाकई बड़ा मोड़ रहा होगा।
बिल्कुल, इसने उस्मानी शासकों को आईना दिखा दिया और यहीं से यूरोपीय तर्ज पर सुधार की सोच गंभीरता से शुरू हुई। तो फिनकेल कहती हैं कि ये पतन नहीं बल्कि एक कड़वी सच्चाई का सामना था और बदलाव की जरूरत का एहसास, अनुकूलन का एक और चरण।
ठीक है, तो अब आते हैं तीसरे और अंतिम दौर पर, सुधार, क्रांति और विघटन, लगभग 1789 से 1923 तक।
हाँ, इसे साम्राज्य की लंबी 19वीं सदी भी कहते हैं। ये दौर था खुद को बचाने की आखिरी जोरदार और अंत में असफल कोशिशों का।
इसकी शुरुआत कहां से हुई?
सुल्तान सेलिम तृतीय से। उन्होंने निजाम ए सदिद यानी नई व्यवस्था नाम से सुधार शुरू किए, सीधे सीधे यूरोपीय मॉडल पर एक नई आधुनिक सेना बनाने की कोशिश की।
पर वो सफल नहीं हुए।
नहीं, जो पुरानी व्यवस्था के हिमायती थे, खासकर यनीचेरी, उन्होंने उनका तख्ता पलट कर दिया। लेकिन सुधारों की जरूरत तो महसूस हो ही चुकी थी।
तो फिर आगे क्या हुआ?
इसके बाद आए महमूद द्वितीय। वो ज्यादा कामयाब रहे। उन्होंने 1826 में वो किया जो बहुत जरूरी हो गया था। उन्होंने बड़ी क्रूरता से यनीचेरी सेना का ही खात्मा कर दिया। इसे शुभ घटना कहा गया।
सेना का ही खात्मा, ये तो बहुत बड़ा कदम था।
हाँ, इससे बड़े सुधारों का रास्ता साफ हो गया। फिर शुरू हुआ तंजीमत का दौर। तंजीमत का मतलब है पुनर्गठन।
इसमें क्या क्या हुआ?
ये सिर्फ सेना या प्रशासन का सुधार नहीं था, ये साम्राज्य की पहचान को ही बदलने की एक कोशिश थी। राज्य को आधुनिक बनाना, प्रशासन को केंद्रीकृत करना।
और वो जो आपने कहा था उस्मानवाद?
हाँ, तंजीमत का एक बड़ा मकसद था उस्मानवाद को बढ़ावा देना, यानी धर्म या जाति से ऊपर उठकर सभी प्रजा को बराबर उस्मानी नागरिक समझना। उन्हें लगा कि शायद इससे साम्राज्य जुड़ा रहेगा, टूटेगा नहीं।
ये उस समय के हिसाब से तो बहुत आगे की सोच थी।
बिल्कुल, ये बढ़ते हुए राष्ट्रवाद का जवाब देने की कोशिश थी। जैसे ग्रीस में, सर्बिया में, बुल्गारिया में लोग अपनी अलग पहचान और आजादी की मांग कर रहे थे।
लेकिन ये उस्मानवाद कामयाब हुआ?
दुर्भाग्य से नहीं। राष्ट्रवाद की लहर बहुत ताकतवर साबित हुई, उसे यूरोपीय ताकतों से भी हवा मिल रही थी और बाल्कन के कई हिस्से एक एक करके हाथ से निकलते गए। ग्रीस आजाद हुआ, फिर सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया।
तो सुधार भी काम नहीं आ रहे थे।
फिर सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय आए। उनका दौर थोड़ा अलग था। उन्होंने कुछ समय के लिए फिर से सारी ताकत अपने हाथ में ले ली, सुधार भी किए, लेकिन उनका मकसद था अपनी सत्ता को बचाए रखना। इसे रक्षात्मक आधुनिकीकरण कहते हैं, मतलब नई तकनीक जैसे रेलवे, टेलीग्राफ, इनका इस्तेमाल किया अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए।
लेकिन ये सब भी काफी नहीं था।
नहीं, 1908 में युवा तुर्कों ने क्रांति कर दी। फिर बाल्कन युद्ध हुए 1912-13 में, उनमें बड़ी हार हुई। और फिर वो सबसे बड़ा और शायद सबसे घातक फैसला, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ शामिल होना।
और युद्ध का नतीजा?
नतीजा भयानक था, सैन्य हार, आर्थिक तबाही और अर्मेनियाई नरसंहार जैसी त्रासदियां भी हुईं। युद्ध के बाद मित्र देशों ने इस्तांबुल पर कब्जा कर लिया। सेवरेस की संधि हुई जिसमें साम्राज्य को लगभग बांट ही दिया गया।
और यही पर अंत हो गया?
सल्तनत का अंत तो हो गया, लेकिन कहानी अभी बाकी थी। मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में तुर्की राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम लड़ा 1919 से 1922।
अच्छा, ग्रीस और बाकी कब्जा करने वाली ताकतों के खिलाफ।
हाँ, और वे जीत गए। 1922 में सल्तनत को खत्म कर दिया गया और 1923 में तुर्की गणराज्य की घोषणा हुई और इसी के साथ वो 600 साल पुराना उस्मानी सपना आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया।
वाह, क्या जबरदस्त कहानी है। उतार चढ़ाव, बदलाव, संघर्ष।
बिल्कुल, और फिंकेल की नजर से देखने पर यह सिर्फ अंत की कहानी नहीं है बल्कि 600 साल तक चले अनुकूलन और परिवर्तन की कहानी है। हार मानने से इनकार की कहानी भी कह सकते हैं काफी हद तक।
पहला और सबसे जरूरी क्या होगा
मेरे ख्याल से? तो वही अनुकूलनशीलता बनाम पतन का मिथक। फिंकेल हमें बार बार यही दिखाती हैं कि साम्राज्य संकटों के जवाब में कैसे बदला। पतन कोई धीमी निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं थी बल्कि सक्रिय, हालांकि अक्सर दर्दनाक बदलाव का दौर था। साम्राज्य ने टिके रहने की भरपूर कोशिश की।
दूसरा अहम विषय क्या लगता है?
पहचान का बदलना। उस्मानी होने का मतलब क्या था, ये समय के साथ बदलता गया। शुरू में ये शायद गाजी योद्धा की पहचान थी, फिर सुल्तान और इस्लाम के प्रति वफादारी। 19वीं सदी में इसे एक मॉडर्न धर्मनिरपेक्ष नागरिक पहचान उस्मानीवाद बनाने की कोशिश हुई,
जो कामयाब नहीं हुई।
हाँ, जो राष्ट्रवाद के सामने टिक नहीं पाई। ये दिखाता है कि पहचान कितनी तरल चीज है, कितनी परिस्थितियों पर निर्भर होती है और कैसे नई विचारधाराएं पुरानी पहचानों को मिटा सकती हैं।
और तीसरा?
तीसरा है शासन में व्यावहारिकता, खासकर गैर मुस्लिमों के प्रति। वो जो मिल्लत प्रणाली थी
ने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका था, इसने सदियों तक सहस्थित बनाए रखा, कम से कम काफी हद तक।
हाँ, ये सोचने वाली बात है आज के भारत जैसे विविधता भरे देश के लिए भी शायद इसमें कुछ सबक हों कि कैसे अलग अलग समूहों को साथ लेकर चला जाए, उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की जगह भी दी जाए।
हाँ, और एक साझा राष्ट्रीय भावना भी हो। यह संतुलन साधना हमेशा मुश्किल रहा है, तब भी और आज भी।
और एक और विषय था, यूरोप के साथ रिश्ता, वो सिर्फ दुश्मनी का नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत जटिल रिश्ता था। हाँ, युद्ध हुए सदियों तक, लेकिन साथ ही व्यापार, कूटनीति, विचारों का आदान प्रदान भी लगातार चलता रहा। उस्मानी साम्राज्य यूरोप का हिस्सा था, उससे कटा हुआ नहीं था। बाद में यूरोप एक खतरा भी बना और सुधारों के लिए एक मॉडल या प्रेरणा का स्रोत भी।
अच्छा, अब कुछ उन विचारों पर बात करते हैं जो फिंकेल की किताब से उभरते हैं, मतलब जिन्हें हम कोट की तरह समझ सकते हैं भले ही शब्दशः न हो।
हाँ, जैसे पहला विचार तो यही है कि उस्मान के सपने की जो कहानी है वो शायद भविष्य की भविष्यवाणी से ज्यादा बाद में गढ़ी गई एक कहानी थी, ताकि एक साधारण शुरुआत वाले वंश को महान और दैवीय मंजूरी वाला दिखाया जा सके।
अच्छा, यानी इतिहास लिखा भी जाता है, सिर्फ होता नहीं है, अपनी जरूरत के हिसाब से।
बिल्कुल, वैधता गढ़ने के लिए। दूसरा विचार, जो किताब का सार ही है, 17वीं सदी को अंत की शुरुआत नहीं बल्कि गहरे संकट और अनुकूलन का दौर मानना चाहिए, जिसमें साम्राज्य ने टिके रहने के लिए गजब का लचीलापन दिखाया।
ये तो सीधे सीधे वो पतन वाली थ्योरी पर सवाल उठाता है।
हाँ, यही फिंकेल का मुख्य तर्क है। तीसरा, उस्मानी साम्राज्य यूरोप के लिए कोई बाहरी अजनबी नहीं था बल्कि सदियों तक यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था का एक अहम और ताकतवर हिस्सा था, जिससे लगातार लेन देन चलता रहा, युद्ध का भी और शांति का भी।
ये वो सभ्यताओं के टकराव वाली आसान सोच को नकारता है, दिखाता है कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी।
हाँ, और चौथा विचार, 19वीं सदी के तंजीमत सुधार सिर्फ पश्चिम की नकल करने की हताश कोशिश नहीं थे, वे राज्य की बुनियाद को ही बदलने का एक क्रांतिकारी प्रयास थे, प्रजा वाले साम्राज्य से नागरिकों वाले आधुनिक राज्य की ओर जाने का।
यानी उन सुधारकों को सिर्फ नकलची नहीं मानना चाहिए, उनके अपने इरादे थे, अपना नजरिया था।
बिल्कुल, वो अपने राज्य को बचाने के लिए बहुत बड़ी वैचारिक चुनौती का सामना कर रहे थे, उन्हें कर्ता मानना चाहिए, सिर्फ प्रतिक्रिया करने वाला नहीं।
ये सब बातें तो इतिहास की हैं, लेकिन क्या इनका आज की जिंदगी से भी कोई लेना देना है? क्या हम इनसे कुछ सीख सकते हैं?
मुझे तो लगता है बहुत कुछ। पहली सीख तो यही है कि किसी भी चीज के, चाहे वो देश हो, कंपनी हो या कोई आंदोलन, उदय और पतन की जो सीधी सरल कहानियां हमें सुनाई जाती हैं उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए।
मतलब हकीकत अक्सर ज्यादा जटिल होती है।
हाँ, चीजें सीधी रेखा में नहीं चलती, वो बदलती हैं, अनुकूलन करती हैं, संकटों से जूझती हैं और कभी कभी नए रूप में सामने आती हैं। ये सबक तो हर जगह लागू होता है।
और दूसरा?
दूसरा, विविधता का प्रबंधन, उस्मानी मिल्लत प्रणाली, चाहे उसमें जो भी कमियां रही हों, हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि अलग अलग पहचानों को साथ लेकर कैसे चला जा सकता है। आज के समाज जहां पहचान की राजनीति इतनी हावी है, वहां ये सवाल बहुत अहम है, कैसे एकता और स्वायत्तता में संतुलन बनाया जाए।
सही बात है। तीसरा क्या होगा?
तीसरा, राष्ट्रवाद की ताकत। उस्मानी साम्राज्य का अंत ये दिखाता है कि आधुनिक राष्ट्रवाद कितनी शक्तिशाली भावना है। उसने सदियों पुरानी शाही वफादारियों को भी तोड़ दिया। ये हमें आज के राष्ट्रवाद और पहचान से जुड़े आंदोलनों को समझने के लिए एक गहरा ऐतिहासिक संदर्भ देता है।
और चौथा?
चौथा, इतिहास का साया। मतलब इतिहास कभी खत्म नहीं होता। आज मध्य पूर्व या बाल्कन में जो भी मुद्दे हैं, जो तनाव हैं, उनके तार कहीं ना कहीं उस्मानी अतीत और उसके विघटन से जुड़े हैं। इतिहास हमारे आज को शक्ल देता रहता है। इसे समझे बिना हम आज की दुनिया को पूरी तरह नहीं समझ सकते।
तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकालें? मतलब सबसे बड़ा सबक क्या है उस्मान का सपना से?
मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात यही है कि इतिहास को सूक्ष्मता से, बारीकी से देखने की जरूरत है। उस्मानी साम्राज्य कोई एक ठहरा हुआ, पिछड़ा हुआ ढांचा नहीं था। वो एक जटिल, लगातार बदलता हुआ और बहुत लंबे समय तक टिका रहने वाला राजनीतिक वजूद था, जिसने 6 सदियों तक दुनिया के इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई।
हाँ, उसे सिर्फ पतन के चश्मे से देखना उसके साथ अन्याय है। वो कहानी का सिर्फ आखिरी हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं।
बिल्कुल। और मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात ये थी कि कैसे ये साम्राज्य लगातार खुद को रीइन्वेंट करने की, नए सिरे से गढ़ने की कोशिश करता रहा। पहचान बदली, संस्थाएं बदली, शासन का तरीका बदला। ये दिखाता है कि टिके रहने के लिए बदलाव कितना जरूरी है, भले ही वो हमेशा कामयाब ना हो।
और ये भी कि कैसे राष्ट्रवाद जैसी नई ताकतों ने आखिरकार उस पुरानी दुनिया को, उस 600 साल पुराने सपने को बदल दिया।
हाँ, कैरोलिन फिंकल की ये किताब बाकी एक महत्वपूर्ण काम है। यह हमें एक विशाल और जटिल इतिहास को गहराई और सहानुभूति से देखने का मौका देती है और याद दिलाती है कि अतीत कितना जटिल, गतिशील और हमारे आज के लिए कितना प्रासंगिक हो सकता है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।